Hey guys, welcome to Geopods. So in today's podcast, I'm joined by another member from Team Strata, Vishesh, and together we're going to talk about the ongoing UP elections, right? So Vishesh, how are you?
I'm good. What about you?
Even I'm good. So Vishesh, the UP elections are going on and there's a lot that there is to unpack. Who will win the elections and what sort of effect will it have on the general elections, because 2022 is right before 2024. So, in your view, how do you see the UP elections?
I believe before going to straight towards that question, because that is the most important question, I believe it's much more better to go back, because everybody has said that if you have to understand something, create a perspective. Like, for example, we are sitting under this hot sun today with birds chirping all over our ears, and trying to talk about an election, I guess that is what it feels like on the ground. When you go, you see the workers working day and night, putting posters, putting pamphlets. And in a state which has been divided by caste, class, creed, with the sexist, misogynistic based politics and other things. So if in one answer, if you ask me how important this election is, I would say very important for 2024. But if you ask me why is it so important, it would take some time to elaborate. I think later in the podcast we'll discuss more on it. But for now, if I have to wrap it up, I will just say that there are many things that makes this country go round and round. Elections, weddings, family, our whole system. And I think UP elections is a combination of all of them. From the joint family politics of the SP party to the orthodoxy Hindutva politics of the RSS to the so-called left libertarian socialist Nehruvian politics of the Lohiavian socialism in SP, in Ambedkarite politics of BSP, the other faction groups, the Ayaram Gayaram politics that this country has seen. So I think if you have to understand this election, it will be much more important to say if this election goes the way, however, in whichever direction it does, what this will tell us about the future of our country, in the sense that we are a country of big weddings, big elections. So how big will this will go and how big of a mess this will create. So I think it will be something to see a glorious mess out of this. So yeah.
Well, wow. There's a lot, as you stated, in the UP elections, and this clearly makes sense, because if you're out from outside the UP, right? Because guys, Vishesh is from UP itself, so he has that extra knowledge about the politics. But if you're somewhere from outside UP, and if you take a glance over the UP elections, there is this sort of view which you could call the conventional view or the average view or the layman's view, is that UP elections and UP, but also Bihar, these elections are about identity. People have all the parties, including BJP, SP, to some extent even Congress, they have their bases, which are moored either in religion, you could say, or in caste matrix. And therefore, people, an average UP person, would vote based upon where his identical loyalties lie. So given that the picture you've given, it's much more complex than just the identity politics. So why do you think there is this view regarding the mainstreaming of ideology or identity in UP politics?
I think because it is much more easier to generalize.
Okay.
When you're looking at a state which has crores and crores of people living in it, with different ideas about how they would have to live their lives, with thousands of problems per day, potholes on the road,
yes,
electricity not coming on time, corruption, mm-hmm, this, that. So things get a very messed up. So it is much more easier to generalize. Yes, there is caste-based politics. Yes, there is a huge caste-based movement which still goes around, anti or for caste. Some are orthodoxy, some are progressive. All of them are up for grabs to get votes.
Okay.
So now, as an average UP person, we have to see where am I living? Because it is such a huge state with so many diversities. If I'm a city person, development is my main agenda.
Yes, Totally.
That double engine economy that the BJP is talking about, or how the electricity is going to be free from the SP's perspective.
Okay.
If I'm living in the village, things get a little more complicated.
Hmm.
It's not just about caste, it's not just about development, it is also about how their identity will be perceived in mainstream politics.
Okay.
But we have to also understand, one thing that people usually tend to forget is that people say that there is a difference between Bharat and India. India lives in cities and Bharat lives in villages, which is absolutely true. But one thing that we have always forgotten, in my opinion, is that Bharat and India are coexisting because they provide each other with more complexities in their identity. In the living rooms, in the normal day lives, the conversations that a middle class family in a city in their sixth floor of a apartment with 10,000 different buildings in a populated and polluted city that they are living in think about when they think about politics affects the electoral votes. And that acceptance of whatever ideology or whatever ideas that they try to perceive is what drives the voting base. Similarly, a farmer who's working day and night in his farm, trying to make his ends meet, wishing that it rains on time, also divides and perceives and sees things in a certain way which affects the development of that city. Because in the end, it is his movement which will drive that how far does the economy will go, how we will develop this area, and how it will coexist with the others. So the idea of the other is always seen as an enemy. But I think if we start seeing in UP especially, as the idea of other as a coexisting phenomena, it will be much more helpful. Because in the early British Raj, as we call it, UP was a state in which there was a law passed in many village areas that nobody who is not in four-wheelers or two-wheelers or a government employee can walk on the government roads.
Okay.
No one with bullock carts, no one with, you know, with their bare foot if they are poor, farmer, whatever. They cannot walk. After independence, this law was, of course, thrown out and said that everybody can walk on road.
Okay.
So you have people with bullock carts on road, you have people with Ferraris on road, and you have people with motorcycles and cycles and with their own foots on road. So when you have so many different identities in economic and social perspective on the road at the same time, it is much more easier to say that, oh my God, it is caste based or this based or that based. But it is more complex for them. A man who's walking on the road with blood under his feet because he's been walking too long, and the guy who's driving his car and saying, damn, there is too much traffic in this world and the road is not that much developed, are coexisting with each other and creating the politics that they are creating. That is how I think UP politics should be seen. As a barefooted man and a man in a car walking together and deciding the fate of this country. This country whose fate is on the road from the beginning.
Okay, so you've given a very comprehensive picture and you sort of unpacked this whole scenario wherein there is not one matrix on which people vote, which is identity, as the conventional way to wisdom goes, but there's a lot, right? But this thing also reminds me that we've been talking English in about the elections for a state in which not many people speak English, right? Even the English speaker would be in the minority. So I guess it would be a good thing to shift to Hindi.
तो ठीक है अब हिंदी में बात करते हैं।
हाँ तो विशेष तुमने पूरा एक पिक्चर बताया कि कैसे यूपी में जो सॉर्ट ऑफ सिटीज़ में लोग रहते हैं और जो फार्मर्स हैं वगैरह वगैरह सबके अपने अपने इश्यूज़ हैं सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं और कैसे ये सारी प्रॉब्लम्स डिफरेंट है तो कोई एक मैट्रिक्स तो रहा नहीं बट अगर मैं अभी तुमसे पूछूँ कि अब जो 2022 के इलेक्शंस हैं उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे वो मेन इश्यूज हैं जो कि इस इलेक्शंस को डिसाइड करेंगे या जिस पे वोटर वोट करेंगे क्या ऐसे कोई इश्यूज हैं भी
देखिए सबसे पहले तो अगर हम इसी की बात करें तो आप भी जानते हो मैं भी ना आप हम दोनों कोई प्रोफेशनल्स नहीं हैं तो हम अभी अपना ओपिनियन दे सकते हैं तो जितना मैंने देखा है जितना मैंने पढ़ा है तो जो दो तीन इलेक्शन जो इश्यूज मेरे आसपास दिखते हैं क्योंकि मैं शहर में रहता हूँ वो ये है कि डेवलपमेंट उसके अलावा वेमेन सेफ्टी उसके अलावा एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो लोग इतना इसके बारे में बात नहीं करते हैं and that is the self-preservation of government. कि government का एक खुद की एक identity और well established होनी चाहिए, corruption से free. कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 अलग अलग लोग CM की chair पे बैठे हैं. They need a little bit authority. लोगों के दिमाग में एक authority का वो है. तो इसी वजह से ये तो रहा शहर का पर्सपेक्टिव. गांव का पर्सपेक्टिव इससे बिल्कुल अलग है. मैं 2-3 गांव में गया हूँ, कुछ टाइम रहा भी. तो उसमें ये है कि दे फील मार्जिनलाइज्ड टू से द लीस्ट बाय दिस बिकॉज फार्मिंग कम्युनिटीज थी मोस्ट ऑफ दिस पीपल हु आई वाज टॉकिंग टू.
ओके, तो यहाँ पे मुझे 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे सेग्रीगेट करना है, क्योंकि ज़रूरी है कि हम इन बातों पर भी ध्यान दें. तो जैसा कि तुमने बताया कि शहरों के इश्यूज अलग हैं, अब उसमें तुमने 3 इश्यूज रखे, तो ये बात तो बिल्कुल इसको आई गेस हार्डली कोई भी इसको नकार सकता है कि वुमेन सेफ्टी पे तो उत्तर प्रदेश में कंडीशंस काफ़ी बढ़िया हैं. ठीक है, वो काफ़ी हद तक अच्छी हो चुकी हैं. अगेन परफेक्ट तो अगेन कुछ हो नहीं सकता, बट वुमेन सेफ्टी पर काफ़ी काम हुआ है, ये तो ऑल अक्रॉस द पार्टीज लोग अग्री करेंगे. बट तुम मुझे ये बताओ, जैसे कि डेवलपमेंट वाली बात तुमने शहर वाले उसमें बोली, तो क्या जो ये डेवलपमेंट का इशू है उस पर अभी यूपी में क्या इनफ डेवलपमेंट, जो पिछले 5 साल नहीं होगी सरकार के, क्या उसमें डेवलपमेंट जितना काफ़ी अपने ब्रिजेस बने हैं और रोड्स बनी हैं, एक्सप्रेसवेज बनी हैं, बट क्या डेवलपमेंट पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कुछ हुआ है, मतलब क्या है डेवलपमेंट की पिक्चर? और इसके कॉन्ट्रेरी में अब क्योंकि फार्म लॉज भी आए, वो जो गाँव का इशू हो गए, अब जो ये फार्म लॉस थे इसको एक डेवलपमेंट सेंट्रिक आइडिया कहा गया था क्योंकि वो मार्केट्स को बढ़ा रहे थे. बट अगेन यहाँ पे वो कॉन्फ्लुएंस हो गया, इंटरेस्ट आ गए फार्मर्स के इंटरेस्ट और डेवलपमेंट जो शहर में शायद लोग थे उनमें एक डाइवर्जेंस आ गया. तो इन दोनों को तो आप कैसे देखते हैं?
इसमें बहुत सारे सवाल हैं. फिर उसके बाद हाँ, तो इसमें दो सवाल जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगे, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपने पूछे. सबसे पहला डेवलपमेंट और उसके अलावा फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ऑफ द स्टेट इन पर्टिकुलर. सबसे पहले डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है, उससे हम नकार नहीं सकते. और हमारे, मैं पर्सनली अपनी बताता हूँ, मुझे बचपन में लगता था डेवलपमेंट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं और था जो काफ़ी ख़राब था. तो वो तो बहुत हुआ है डेफिनेटली. चाहे एक नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर ब्रिज बिल्डिंग हो, रोड्स बिल्डिंग हो, मेट्रो हो, ये हो वो हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है. वुमेन सेफ्टी काफ़ी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ परफेक्ट है, मगर पिछले SP के टाइम से रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है. करप्शन चार्जेस नहीं लगे हैं इन मेन पब्लिक से, अगर है भी तो दिख नहीं रहे. ठीक, तो उस परस्पेक्टिव से काफ़ी अच्छा है. और फिर हम अगर गाँव की बात करें, जो दूसरा क्वेश्चन है कि अब फार्म लॉज गाँव वगैरह, गाँव में ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें लगता है कि उन्हें मार्जिनलाइज किया जा रहा है. मैं भी इस लॉज के साथ था क्योंकि मुझे लगता था प्राइवेटाइजेशन आएगी, डेवलपमेंट होगा,
मार्केट एक काफी मार्केट
के प्रो था,
क्योंकि जब मार्केट फैलता है हमने पोस्ट लिबरलाइजेशन में देखा
करेक्ट. तो उसमें एक मैंने इंटरेस्टिंग डिवाइड देखा. जो यंगर जनरेशन है, जो आपके मेरे साथ के लोग हैं, जो मेरे रिलेटिव्स में काफ़ी सारे, वो इसके प्रो थे, मगर जो ओल्डर जनरेशन है देवर अगेंस्ट इट.
अच्छा,
तो मैं समझ नहीं पाया. तो मैं हफ्ता दो हफ्ता रुका था 2-3 गांव में, तो मैंने पूछने की कोशिश भी की. तो एक चीज़ जो बहुत निकल कर सामने आई वो ये थी कि सबसे बड़ा फियर ये है कि उन्हें एक सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट फील होता है जो उनकी घट गई है.
अच्छा,
इन द आइज ऑफ सोसाइटी. और दूसरा उन्हें ये फील होता है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है कि दे फील लाइक दैट दे हैव नो वैल्यू इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, दे हैव नो वैल्यू इन फ्रंट ऑफ द कंट्री. तो वो एक वैल्यू बेस्ड गेम है उसमें. हाँ, मैं बिल्कुल 1000 तथ्य निकाल सकता हूँ कि एक ऑपोजिशन का ये था, इसमें बहुत सपोर्ट था वगैरह वगैरह, जो था और जो हर मूवमेंट में होता है, कोई मूवमेंट इससे अलग नहीं है. मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव की तरफ जाते हैं, जो पर्सपेक्टिव है एक इकोनॉमिकल ग्रोथ का वगैरह वगैरह, तो उसमें कई सारी गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो पहले लगता है कि ये तो होनी ही है, दे आर इनएविटेबल, पर फिर आपको रियलाइज दैट नो, दे आर नॉट इनएविटेबल, दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय अस थिंकिंग दैट दे आर इनएविटेबल. जैसे अभी हम एक पार्क पे बैठे हैं सामने, ये बहुत एक सुंदर पार्क है, मगर इसके चारों तरफ कॉन्क्रीट लगाया जा रहा है, इट लुक्स क्वाइट अगली,
इट डज,
ठीक है, एंड द बर्ड्स चर्पिंग एवरीवेयर. नाउ इमेजिन आज से 5 साल बाद हम यहाँ आते हैं एंड देर इज़ नो ग्राउंड.
हाँ,
ठीक है, साइकोलॉजिकली दैट विल बी वेरी इफेक्टिव टू अस, बट द कॉलेज कैन से कि नहीं नहीं यहाँ वी हैव मेड डेवलपमेंट दिस एंड दैट, तो दैट इज़ अ वेरी जनरलाइजेशन. अगर हम बात करें एक्चुअल उसकी, तो मेरे हिसाब से येस देर वॉज अ फियर कि इट विल बी अ सेंट्रलाइज कैपिटल, एक फ्यूडलिस्टिक कैपिटलिज्म चलेगा, जिसके खिलाफ एक बहुत बड़ा मुहिम चली और वो जीत गए. तो अब उनके दिमाग में ये है कि नाउ वी हैव डिफीटेड दीज पीपल, नाउ वी हैव टू डिफीट देम एंड शो देम हु दे रियली आर इन इलेक्शंस.
अच्छा.
एंड उसमें कास्ट भी बहुत ज़्यादा एक बड़ा रोल प्ले कर रही है. RLD हो गई, उसके अलावा आपकी BSP हो गई, SP हो गई, तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत जाग चुकी है. BJP भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से दूर नहीं गई, मगर वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को अलाइन करना चाहती साथ में. वो समझती कि सारी कास्ट को एज अ होल ले ले, मगर ये सारी पार्टीज कास्ट को एज अ पैकेट्स में बांट रही हैं, एंड पैकेट्स को वो बंडल्स में डिवाइड करके खुद में डिस्ट्रीब्यूशन चलने का गेम है. इससे ये ना हम कह सकते हैं ना ये अच्छा है ना ये बुरा है, हम बस ये कह सकते हैं दैट इज़ इंडिया, वी हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज़. तो इससे अब ये हो रहा है कि मुझे पर्सनली लगता है कि इन द कॉस्मोपॉलिटन BJP हैज़ अ ह्यूज ग्रिप, बट इन द विलेज एरियाज BJP इन मैनी प्लेसेस इज स्पोकन एज अ कस वर्ड.
अच्छा.
यस.
और इसका रीजन क्या है?
बिकॉज दे फील कि
BJP एज अ पार्टी
रूट्स को बिलोंग करती है, एंड दे आर अथॉरिटेटिव एंड दे आर हिंदुत्व माइंडेड, एंड इन विलेजेस हिंदुत्व इज नॉट सीन एज अ वेरी गुड थिंग टू बी इन जनरल. इट इज नॉट सीन एज अ वेरी गुड थिंग ऑल द विलेजेस दैट आई हैव बीन इन. इट इज जस्ट सीन एज अनदर आइडियोलॉजी विच इज नॉट गुड फॉर अस, नॉट गुड फॉर आवर क्रॉप्स, नॉट गुड फॉर अस.
अच्छा.
हाँ.
तो यूपी के गांव में ऐसा
सीन दिखता है. जैसे कि मैं एक बहुत जनरल चीज़ कहता हूँ, न्यूयॉर्क में तब सोशल चेंज आया था, तो ग्रेफिटीज से लोग सोशल चेंज देखा करते थे. कि ग्रेफिटी से सोशल चेंज है. मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, लोगों की शादियों में, एंड आई एम नॉट किडिंग, गाने बजते हैं प्रो RLD प्रो SP शादियों में. लोग शादियों के बाहर और उसके अलावा जितने भी फंक्शंस के बाहर भी अगर हम देखें, पोस्टर्स और पैम्फलेट्स पे जो योगी और मोदी उनके पैम्फलेट्स पे लिखते हैं चोर गद्दार विद ब्लैक पेन्स एंड ऑल दैट, आई हैव सीन दैट.
अच्छा.
सो द रेज इज दिस मच कि दे आर जस्ट आउट देयर एंड पोरिंग इट. और जो मीडिया है, मीडिया ने इसमें ये रोल प्ले किया है कि मीडिया कॉन्सेंट्रेट कर रही है कास्ट के मुद्दे के ऊपर, तो अब
जैसा वो हमेशा
करती है, तो अब उन्हें भी लग रहा है कि यस जो कास्ट का मुद्दा है, सो नाउ लेट अस शो देम हु वी रियली आर.
ओके.
लेट्स शो BJP हु वी रियली आर.
ओके. सो अब जैसे कि ये आपने बातें बताई विशेष, बट अगर इस सब के बावजूद भी अगर हम वापस आएं और हम 2022 के इलेक्शंस को देखें, जिसमें फोकस करें, तो अभी ऐसा ही दिखता है जितना प्रैक्टिकली बोला जाए तो अभी यही लगता है कि जो BJP है, BJP पावर में फिर से आने वाली है. उसकी शायद डोमिनेशन कम हो सकती है, शायद सीट्स कुछ कम हो सकती हैं, बट BJP ही पावर में आने वाली है. हाँ. और समाजवादी पार्टी का जो क्लाउड है वो बढ़ने वाला है.
तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप MP से हो, तो एज एन MP आप एक आउटसाइडर हो इन UP इलेक्शंस, आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं?
पहली बात तो ये कि जो
विद अ ग्रिन ऑन इन ग्रिन ऑन योर फेस,
हाँ जी, जो ये शब्द है आउटसाइडर, इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ चुकी है हमारी पॉलिटिक्स में. तो हाँ, मतलब इन सरकार यू कुड कॉल मी एन आउटसाइडर फॉर UP इलेक्शंस. तो यार मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि स्टार्टिंग से ही देखा जाए तो जो UP के इलेक्शंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं जब नेशन की पॉलिटिक्स की बात आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एकदम स्टार्टिंग से जो UP है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो या इंदिरा गांधी हो या इवन अभी नरेंद्र मोदी भी हैं, तो ये उनकी एक फोर्ट्रेस मानी जाती है. तो मतलब ऐसा बोला जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके आता है. ऑन द सेम सिनेरियो अभी भी आज के टाइम में भी जो UP के इलेक्शंस हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट जब हम नेशनल इलेक्शंस की बात करते हैं, प्लस 2024 में नेशनल इलेक्शंस हैं, जनरल इलेक्शंस हैं, और 2022 में उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस हैं. तो ये देखना कि क्या रिजल्ट आएगा, और जो भी रिजल्ट आएगा उसका एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इफेक्ट मेरे हिसाब से 2024 के इलेक्शंस पर पड़ेगा. अगर अभी देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि BJP अगेन वापस पावर में आ रही है, हाँ उनकी सीट्स कम होंगी बट समाजवादी पार्टी की सीट्स बढ़ेंगी, बट बीजेपी के पास अभी भी मेजॉरिटी उनकी सिक्योर्ड लगती है, बात ये है। बट ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी आगे चल के ये देखना होगा कि कैसे जब यूपी का इलेक्शन आएगा उसका क्या इफेक्ट बीजेपी की जो लीडर्स की हयाकी है उस पर पड़ेगा और कैसे वो नेशनल इलेक्शंस को अफेक्ट करेगा, ये आई गेस देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
तो अगर हम कहें द क्रक्स ऑफ द इंटायर मैटर इज कि 2024 में कई सारी चीज़ें डिसाइड होंगी आपके इलेक्शन से। सबसे पहली चीज़ जो डिसाइड होगी कि योगी एज अ चीफ मिनिस्टर का स्टैचर अब नेशनल पॉलिटिक्स में कहाँ जाता है।
एग्जैक्टली
उसके बाद ये डिसाइड होगा कि इतनी बड़ी स्टेट है वो अपना एक नेशनल एजेंडा किसे सेट करने में मदद करती है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे हिसाब से है कि एक स्टेट जो वीपी सिंह के टाइम से भी जिसे कहा जा रहा है वीपी सिंह पॉलिटिकल थॉट्स में अ स्टेट विच यू हैव टू टेक अ सल्यूट ऑफ बिफोर गोइंग टू दिल्ली, इसके कंधे पे चढ़ के जाना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है या फिर ये अब इसके ये अपने लास्ट लेग्स पे है या नहीं है। तो इन द एंड यस, अब इन सब क्रक्स को हम डिसाइड करेंगे तो आगे क्या होगा, आभास विरोधाभास जो भी चलेगा देखने लायक होगा।
एग्जैक्टली तो यूपी इलेक्शंस अभी अभी इलेक्शंस स्टिल चल रहे हैं, रिजल्ट आने में टाइम है एंड वी विल सी कि कैसे क्या रिजल्ट आते हैं, क्या होता है। अनटिल देन आई गेस विशेष लेट्स कॉल
इट अ डे।
यस, सो दैट वाज अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड विशेष रिगार्डिंग द इलेक्शंस ऑफ उत्तर प्रदेश। And thank you so much for listening to our podcast. And if you liked it, then consider listening to other podcasts of ours. And please also consider visiting our Instagram page and our website, which we'll be putting on the page. Thank you so much for listening to us. And we hope to see you soon.